अभिमन्यु ने नकुल और नक्ष को कड़ा जवाब दिया था। नक्ष को डिमोट करने पर वो कंपनी छोड़कर भी चला गया था, तो वहीं नकुल ने जो भी अमाउंट निकाले थे उसका उसने सबके सामने डेटा दे दिया था। अभिमन्यु ने उसका भी पर्दाफाश कर दिया था। नकुल ने वो अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले थे। जब नकुल पकड़ा गया तो उसने अभिमन्यु को पैसे लौटाने की बात भी कही, लेकिन अभिमन्यु ने पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवा दिया था। उसने एक ही दिन में नकुल और नक्ष दोनों की छुट्टी कर दी थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु के ऐसा करने पर प्रशांत बहुत गुस्सा हो गया। उसने अभिमन्यु पर हाथ तक उठाया और उसे मर जाने की बात कहकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही अभिमन्यु मीटिंग रूम के कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। उसे अपनी पुरानी बुरी यादें सता रही थी। क्यों मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं, अभिमन्यु ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। पहले अंजलि ने उसे जल्दी पैदा करके छोड़कर चली गई थी, तो उसके बाद प्रशांत ने कभी उसे पिता का प्यार नहीं दिया। हर छोटी गलती पर उसे बड़ी सजा दी जाती थी। नकुल और प्रशांत तो मानो अपनी नफरत निकालने का मौका ढूंढते थे। उन्होंने अभिमन्यु को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। अभिमन्यु को वो दिन याद आ गया जब वो 9 साल का था। नकुल उसके पास आया और उसे दिग्विजय के टाउन घूमने जाने की बात कही। साथ में वे फार्म भी जाने वाले थे। भैया, हमें एक बार दादी को बता देना चाहिए। मैं उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाता। अगर उन्हें पता चला तो वे गुस्सा होंगे, अभिमन्यु ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वही तो बात है कि दादी हर बात पर गुस्सा करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई हमेशा अपने छोटे भाई से प्यार करते हैं। हम गांव पहुंचकर दादी को कॉल करवा देंगे। तुम बस अपने बड़े भाई पर यकीन रखना, नकुल ने प्यार से कहा। ये पहली बार था जब वो उसके साथ प्यार से पेश आ रहा था। अभिमन्यु उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा तो नकुल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं सबके सामने तुम्हारे साथ गुस्से में बात करता हूँ, डैड जब तुम्हें मारते हैं तो उनका साथ देता हूँ। तो मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। हमारे डैड बहुत बुरे हैं, वे मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे नज़र झुकाकर उसकी बात पर हामी भरी। जल्द ही वे रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। अभिमन्यु को इस बात की हैरानी हुई कि जब उनके पास पर्सनल गाड़ी है तो वे ट्रेन से क्यों जा रहे थे। भैया, गाड़ी से चलते हैं ना, मुझे लोगों के बीच अजीब लगता है, अभिमन्यु ने मासूमियत से कहा। तुमने कभी ट्रेन को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं और बहुत मज़ा आता है, नकुल ने मुस्करा कर कहा और फिर अभिमन्यु को एक जूस का ग्लास दिया। अभिमन्यु ने हिचकिचाते हुए ले लिया था, लेकिन अभी भी वो पी नहीं रहा था। नकुल ने आंखें घुमाई और अभिमन्यु से कहा, लगता है तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। अभिमन्यु ने नकुल का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आई ट्रस्ट यू भैया। इतना कहकर उसने वो जूस पी लिया। कुछ ही देर में अभिमन्यु का सिर नकुल के कंधे पर था। नकुल ने जूस में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिसे पीने के बाद अभिमन्यु बेहोश हो गया था। अभिमन्यु के चेहरे को देखकर नकुल ने कहा, अच्छा हुआ जो मैंने उनकी बातें सुन ली। तो वे अभिमन्यु को ज्यादा शेयर्स देकर उसे राजवंश एम्पायर का सीईओ बनाना चाहते हैं। अभी तो ये बच्चा है और फिर भी उनके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है। जब ये लड़का बड़ा होगा तो न जाने ये मेरी फैमिली के साथ क्या करेगा। नक्श भी पैदा हो गया है, किसी ने नक्श के बारे में नहीं सोचा और इस कल के आए लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। नकुल अब रेलवे स्टेशन जाने के बजाय कहीं और जा रहा था। उसने कुछ आदमियों को अभिमन्यु को देते हुए कहा, सबको यही लगेगा कि अभिमन्यु का किडनैप हो गया है, तो ऐसा करना कि 2-3 दिन तक इसे अच्छे से रखना और उसके बाद इसके खाने में जहर मिलाकर इसे मरवा देना। मुझे इसकी अपडेट देते रहना जब तक ये मर ना जाए। इतनी बड़ी प्लानिंग नकुल ने अकेले नहीं की थी। बड़े होने पर अभिमन्यु ने बाद में इस मामले की तह तक जाने की सोची तो उसे पता चला कि प्रशांत भी इस मामले में उसके साथ था। वो अभिमन्यु को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वहीं अभिमन्यु के वापस नहीं आने पर पृथ्वी ने उसकी लाइव लोकेशन निकाली। वो अभी भी मीटिंग रूम में था तो पृथ्वी हैरानी से बोला, सर अभी तक मीटिंग रूम में क्या कर रहे हैं। उन्हें तो मैम से मिलने जाना था और उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी करवा रखी थी। उनके ऑफिस में कब से फ्रेश फ्लावर्स और चॉकलेट तैयार पड़े हैं, फिर मीटिंग रूम में वे किस चीज़ में लगे हुए होंगे। पृथ्वी जल्दी से अपने कदम मीटिंग रूम की तरफ बढ़ाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन की वो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गया था। अभिमन्यु घुटनों में सिर देकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसने उसकी ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। पृथ्वी जल्दी से उसके पास गया और अभिमन्यु का कंधा सहलाकर कहा, मिस्टर राजवंश, आप ठीक है ना? आपको कोई मेंटल स्टेटस नहीं है, फिर इस तरह का पैनिक अटैक। अभिमन्यु की हालत देखकर पृथ्वी घबरा गया था, क्योंकि अभिमन्यु का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसकी आंखों में भी आंसू थे और उसका शरीर हल्का कांप रहा था। पृथ्वी अभिमन्यु के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहा था, उसने उसकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। इनफैक्ट वो तो मेंटली काफी स्ट्रांग था। उसके उठाने पर भी अभिमन्यु नहीं उठा तो पृथ्वी ने तुरंत ऐशिका को कॉल किया। दूसरी तरफ ऐशिका ने पृथ्वी का कॉल देखा तो उसे लगा कि अभिमन्यु के ना आ पाने पर पृथ्वी उसे बताने के लिए कॉल कर रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और नाराजगी जताते हुए कहा, वो खुद भी कॉल करके बोल सकता था कि वो नहीं आ सकता है। तुम उसके प्रोफेशनल काम संभालने के लिए हो पृथ्वी, पर्सनल मामले क्यों हैंडल कर रहे हो? एक्चुअली मैम, आप अभी राजवंश एम्पायर चली आइए, मिस्टर राजवंश की हालत ठीक नहीं है, उन्हें आप ही संभाल सकती हैं, पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें अभी भी अभिमन्यु की तरफ थीं। क्या हुआ है उसे? तुम उसका ख्याल रखना, मैं बस अभी जल्दी पहुंचती हूँ, ऐशिका ने हड़बड़ाकर जवाब दिया और वो दौड़कर बाहर जाने लगी। केशव उस वक्त घर पर नहीं थे। ऐशिका भी नहीं जानती थी कि दोपहर के बाद से केशव कहाँ गायब थे। ऐशिका ने ड्राइवर को लिया और उसे राजवंश एम्पायर जाने को कहा। ऐशिका के कहने पर ड्राइवर काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। लगभग एक घंटे में ऐशिका राजवंश एम्पायर पहुंच चुकी थी। रात होने की वजह से ऑफिस के ज्यादातर एम्प्लॉयज वहां से जा चुके थे। ऐशिका ने प्राइवेट लिफ्ट ली और वो मीटिंग रूम में पहुंची। इस एक घंटे में अभिमन्यु टस से मस नहीं हुआ था। वो वहीं पर बैठा हुआ था और आंखों में आंसू लिए सूनी निगाहों से बस एक दिशा में घूर रहा था। अभिमन्यु की ऐसी हालत देखकर ऐशिका को झटका सा लगा। उसने पृथ्वी से हल्के गुस्से में पूछा, क्या हुआ है इसे? मैंने इसे कभी इतना परेशान नहीं देखा, तुमने डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि इन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मैं यहाँ पर नहीं था, पर मैंने कैमरे में चेक किया, प्रशांत राजवंश ने इन पर हाथ उठाया था, पृथ्वी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ऐशिका सुन रह गई। वो दांत पीसते हुए बोली, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अभिमन्यु को तकलीफ देने की? अब राजवंश फैमिली और कितना गिरेगी? पृथ्वी ने अभी तक उसे इस बारे में तो बताया ही नहीं था कि पहले मीटिंग रूम में क्या हुआ था। वो जल्दी से दौड़कर अभिमन्यु के पास गई। अभिमन्यु ने एक नजर उसे देखा और जल्दी से ऐशिका को अपने सीने से लगा लिया था। अभिमन्यु ने ऐशिका को इतना टाइट पकड़ा था मानो उसे छोड़ने पर वो भी सबकी तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। पृथ्वी कमरे से बाहर आ गया था, आखिर वो अपने बॉस को इस हालत में कैसे देख सकता था?
बाहर आते ही पृथ्वी ने किसी को कॉल पर कनेक्ट किया और सर्द आवाज में कहा, नक्श, राजवंश पर नजर रखो, मैं तुम्हें आज की मीटिंग की हाइलाइट्स दे रहा हूँ। कल सबको पता चल जाना चाहिए कि नक्श और नक्श राजवंश राजवंश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, मेक श्योर करना कि नकुल राजवंश का केस कोई भी लॉयर अपने हाथ में ना ले। अगर अभी अभिमन्यु सही हालत में होता तो वो मीडिया तक सिर्फ मीटिंग की हाइलाइट्स और नकुल के अरेस्ट होने की न्यूज़ ही पहुंचाता। लेकिन प्रशांत ने नक्श और नक्श की वजह से अभिमन्यु के साथ जो भी किया था उसका बदला लेने के लिए पृथ्वी ने ये सब किया था। तुमने अच्छा नहीं किया प्रशांत राजवंश, सुबह तुमने मेरी इंसल्ट की थी, मैंने इस बात को जाने दिया, लेकिन तुमने जो मिस्टर राजवंश के साथ किया उसका हिसाब तुम्हारे बेटे को चुकाना होगा, पृथ्वी ने सख्त आवाज में कहा। कमरे के अंदर ऐशिका प्यार से अभिमन्यु की पीठ को सहला रही थी, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल शांत था। ऐशिका ने उसे सहलाते हुए धीरे से कहा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारी मुश्किल मोमेंट पर तुम्हें अकेले छोड़ दिया। तुम बहुत स्ट्रांग हो अभिमन्यु, इस तरह वीक नहीं पड़ सकते, अगर तुम भी टूट गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे होने से मैं हूँ, प्लीज जवाब दो, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है, हमारी बेबी को परेशान कर रही है। ऐशिका कब से उससे ऐसी बातें करके उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी अभिमन्यु बिल्कुल शांत था। उसकी ये खामोशी ऐशिका को और परेशान कर रही थी। ऐशिका ने अभिमन्यु से बात करने के लिए उससे अलग होना चाहा, तभी वो धीमी आवाज में बोला, ऐसे ही बैठी रहो, सिर्फ तुम ही हो जिसे शायद मेरे ना होने का फर्क पड़े। अभिमन्यु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ऐशिका को समझ आ गया था कि प्रशांत ने फिर से उसका दिल दुखाया था। ऐशिका ने अभिमन्यु को जवाब देते हुए कहा, तुम जानते हो ना, वो आदमी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, हम सब तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, दादी, मॉम, डैड, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद डैड बनने वाले हो, और देखना, तुम्हारा बच्चा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगा, उसे फर्क पड़ेगा तुम्हारे होने या ना होने से, उसे अभी भी फर्क पड़ रहा है। इतना कहकर ऋषिका ने अभिमन्यु का हाथ अपने पेट पर रख दिया था। हालांकि उसकी थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ था, इसीलिए बच्चे की कोई खास मूवमेंट शुरू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कई बार इमोशंस काफी होते हैं, ये सोचकर ऋषिका ने ऐसा किया। महसूस करो उसे, अगर वो इस दुनिया में होता तो तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता। खुद को संभालो अभिमन्यु, तुम अभिमन्यु राजवंश हो, जो अपनी जिद पर आ जाए तो किसी को भी अपने सामने झुका सकता है, तो आज किसी के कुछ शब्द और घटिया हरकत से तुम इतना कैसे टूट सकते हो? ऐशिका ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। उन्होंने कहा मुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, मेरी माँ भी शायद यही चाहती थी, तभी वो मुझे जल्दी पैदा करके मुझसे पीछा छुड़ाकर चली गई। कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता है ऐशिका, अभिमन्यु ने खोए हुए स्वर में कहा। मुझे औरों से मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरी दुनिया तुम में बसती है, ऐशिका ने सख्त आवाज में कहा। वो अभिमन्यु को इस तरह ब्रोकन नहीं देख सकती थी। ऐशिका ने जैसे तैसे करके उसे उठाया और सहारा देकर उसे अपने केबिन में लेकर गई। वहां जाकर किसी ने अभिमन्यु को सोफे पर बिठाया और खुद उसके पास आकर बैठ गई थी। ऐशिका ने गहरी सांस ली और फिर अभिमन्यु के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी और ये जताना चाहती थी कि वो उसे बहुत प्यार करती है। अभिमन्यु ने पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो उसके प्यार के आगे झुककर उस किस में डूबने लगा था। उन दोनों के बीच क्रिएट हुआ ये छोटा सा मोमेंट कब एक बड़ा लम्हा बन गया था, दोनों को भी एहसास नहीं था। अभिमन्यु का केबिन लॉक था और इस वक्त वे दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ केशव अपनी गाड़ी से जेल पहुंच चुके थे। मालविका को जेल में शिफ्ट किया गया था, वो गोवा में नहीं थी। वहां आते ही वो जेलर से मिला और बोला, इसके खिलाफ जो भी केस किए गए हैं मुझे सब रद्द करवाने हैं और इस औरत को जेल से बाहर निकलवाना है। मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने उसके केस का फैसला तक नहीं होने दिया है। वे यही चाहते हैं कि मालविका बिना सजा के जेल में रहे, हवलदार ने नजरें झुकाकर कहा, लेकिन मुझे इसे बाहर निकालना है। इतना कहकर केशव ने उसके हाथ में एक चेक रखा जिसमें एक मोटी रकम भरी गई थी। उसे देखकर हवलदार ने कहा, ये बीमार होने का कहती रहती है, अस्पताल शिफ्ट करने का बोलकर इसे थोड़ी देर के लिए बाहर भेज सकता हूँ, आप चाहो तो बीच में से इसे आजाद करवा सकते हैं। केशव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उनका काम हो गया था, ना जाने क्यों उन्हें मालविका को आजाद करवाना था। जहां अभिमन्यु ने मालविका को जेल में रखने के सख्त ऑर्डर दिए थे, वहीं उसके खिलाफ मालविका को इस वक्त जेल से रिहा किया जा रहा था और ये करवाने वाला कोई और नहीं खुद केशव सिंघानिया था। क्या लगता है केशव मालविका के साथ क्या करेगा? मालविका और आयशा ने ईशिका को बहुत तकलीफ दी थी, अब केशव को सच पता चल गया है तो वो इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। देखते हैं वो क्या करता है।